पृष्ठ संख्या 240, 6, मिर्जा गालिब, सन 1797 से 1869 ईस्वी। मध्ययुगीन हिंदी में जब रीति काल अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो उसी काल में उसी समय उर्दू कविता भी अपने पूरे शबाब पर थी। आतिश अनीस, मिर्जा दबीर, नज़ीर अकबराबादी, मोमिन, जौक और मिर्जा गालिब जैसे कवि अपनी काव्य प्रतिभा से उर्दू कविता की नई इबारत लिख रहे थे। हिंदुस्तानी भाषा के जो दो साहित्यिक रूप हुए, उसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता वाली भाषा को हिंदी तथा अरबी फारसी शब्दों की बहुतायत वाली भाषा को उर्दू कहकर पुकारा गया। उर्दू साहित्य के इतिहासकार प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन का स्पष्ट मानना है कि शौर सेनी अपभ्रंश से विकास पाने वाली अन्य भाषाओं में एक उर्दू भी है। यही कारण है कि उर्दू पंजाबी और हरियाणी के व्याकरणों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ संख्या 9। उर्दू मध्यकालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली भाषा थी। दिल्ली, आगरा और अवध की देशी बोलियों का रस लेकर वह आगे बढ़ी और देखते ही देखते मुल्क के सांस्कृतिक क्षितिज पर छा गई। वास्तव में भाषा का कोई धर्म नहीं होता, सामाजिक आवश्यकताएं उसे जन्म देती हैं। उसमें हिंदू मुसलमान का भेद करना, उसका अपमान करना है। भारत में मुसलमानों ने भी अवधी और ब्रजभाषा में उसी प्रकार रचनाएं की हैं जिस प्रकार हिंदुओं ने। हिंदी कविता के इतिहास में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, रसखान, जायसी, नूर मोहम्मद के नाम उसी प्रकार समादृत हैं जैसे मीरा सूर और तुलसी के। 19वीं सदी के अंत तक उर्दू शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं मिलता, वरन उसकी जगह उसका एक अन्य नाम रेखता या रेखता मिलता है, जिसका अर्थ है मिला जुला। अर्थात यह एक मिली जुली भाषा थी जो काव्य में व्यवहृत हो रही थी। मिर्जा गालिब मध्यकाल के ही नहीं बल्कि समस्त उर्दू साहित्य के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी बुलंदियों को आज तक कोई भी स्पर्श नहीं कर सका। गद्य पद्य दोनों में ही उनका समान अधिकार था। वे फारसी के उतने ही बड़े लेखक थे जितने कि उर्दू के। उनका काव्य मुगल सल्तनत की अच्छाइयों और बुराइयों का जीवंत आईना है। रीतिकालीन कवियों की भांति गालिब की शायरी में भी हुस्नो इश्क की हर एक रंगत का चित्रण बड़े ही तरतीब और मस्ती के साथ हुआ है। रीतियुगीन कवियों की भांति गालिब को भी दरबारी आश्रय प्राप्त था। पृष्ठ संख्या 241, उन्हें नवाब अहमद बख्श से पेंशन मिलती थी। बाद में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से भी उन्हें बहुत काल तक आर्थिक सहायता मिलती रही। जब अंग्रेजों ने बादशाह को कैद कर रंगून भेज दिया, तब गालिब भी होश फाखता हो गए और उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार बहुत कुछ मामलों में गालिब का जीवन भी रीतिकालीन कवियों के जीवन से मिलता जुलता है। गालिब की शायरी को उर्दू कविता में वही ऊंचाई प्राप्त है जो संस्कृत में कालिदास, अंग्रेजी में मिल्टन और वर्ड्सवर्थ तथा बंगला में रविंद्रनाथ ठाकुर और हिंदी में तुलसीदास को प्राप्त है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह खां था। गालिब उनका उपनाम था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। पहले ये असद उपनाम से ही शायरी किया करते थे। इन्हें मुगल राज की ओर से नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क तथा निजाम जंग की उपाधि प्राप्त थी। बचपन में ही पिता के गुजर जाने के कारण ननिहाल में ही इनका पालन पोषण हुआ। बड़े होकर विवाहोपरांत दिल्ली में ही रहने लगे। अपने उर्दू और फारसी के पत्रों में अपने जीवन के संघर्षों को गालिब ने बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। दिल्ली में रहते हुए वह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के संपर्क में आए। जफर स्वयं एक अच्छे शायर थे। उन्होंने गालिब की प्रतिभा का सम्मान किया और जौक की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने गालिब को ही अपना काव्य गुरु बना लिया तथा इन्हें अनेक उपाधियों से विभूषित कर दोशाला और खिलअत भेंट की। परंतु इसके 2 वर्षों बाद ही 1857 ईस्वी का गदर हो गया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह को कैद कर रंगून भेज दिया। वहाँ वह 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में कहते रहे। उस गदर के जमाने में मिर्जा गालिब पर क्या कुछ बीता, इसे उन्होंने अपनी पुस्तक दस्तांबो में दर्ज किया है। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को यह महान शायर इस फानी दुनिया से विदा हो गया। काव्य कृतियाँ। गालिब ने पद्य गद्य दोनों में लिखा है, तथापि उर्दू साहित्य के इतिहास में वह अपनी उम्दा शायरी के लिए ही अधिक जाने जाते हैं। गालिब की शोहरत का आधार दीवान-ए-गालिब है, जिसमें उनकी शायरी के अल्फाज बड़े ही दार्शनिक गहराई और कलात्मक सुंदरता के साथ रचे गए हैं। कबीर की तरह शेख और ब्राह्मण में कोई अंतर न कर वह मानव प्रेम को सबसे बड़ा धर्म समझते थे। उर्दू में उन्होंने अधिकतर कसीदे और गजलें लिखी हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने कसीदों और गजलों को पूर्णतः ईरानी पृष्ठ संख्या 242 शैली में ना लिखकर उसमें अपनी मौलिक प्रतिभा से नया प्रयोग किया है। इसलिए प्रायः वह कहते थे कि गालिब का है अंदाजे बयां, और गालिब की शायरी में वह सब कुछ है जो उसमें होना चाहिए। गद्य कृतियाँ। गालिब फारसी गद्य के एक महान लेखक थे। उनके जैसा फारसी का ज्ञान रखने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत कम पैदा हुए हैं। गालिब ने अपने समकालीनों से फारसी और उर्दू में जो पत्र व्यवहार किया है, आज वह उर्दू साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी लिखी थीं। ये हैं उदे हिंदी, उर्दू ए मुअल्ला दो भाग, मकातीबे गालिब, खतूते गालिब, नादिर खतूते गालिब, नाम ए गालिब, लताइफे गैबी और तेगे तेज। उक्त में अंतिम तीन पुस्तकें साहित्यिक परिचर्चा से संबंधित हैं। इसमें गालिब के लिखे हुए पत्र खतूते गालिब तथा नादिर खतूते गालिब ही अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनसे गालिब के जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। गालिब और उनकी शायरी। गालिब की उर्दू शायरी में कई शैलियों के दर्शन होते हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में जहाँ फारसीपन की मिठास है, वहीं प्रौढ़ काल की रचनाओं में जीवन का गहन दार्शनिक विश्लेषण अपनी पूरी रंगत के साथ उभर कर आया है। गालिब की कल्पना शक्ति बेजोड़ थी, उस पर भी उनकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं मिलकर उनकी काव्य कला को अद्वितीय बनाती थीं। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा कि गालिब की काव्य रचना में कल्पना और दर्शन का ऐसा सामंजस्य है कि उनके विचार जटिल और कठिन होते हुए भी हृदय पर तीर की तरह जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपनी राह अलग निकाली थी। उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ 113। उनके उर्दू काव्य दीवाने गालिब के संदर्भ में एक आलोचक का कथन है कि इसमें मुश्किल से 100 पन्ने होंगे, मगर क्या है जो इसमें विद्यमान नहीं है? कौन सा ऐसा राग है जो जीवन के इन तारों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मौजूद नहीं है? उनकी विशेषताओं में वास्तविकता, शैली की सुंदरता, ताजगी, दार्शनिक गहराई, भावात्मक अनुभूति और नवीनता सब इस प्रकार से मिली जुली है कि कोई दूसरा कवि उनके बराबर नहीं लाया जा सकता। वही पृष्ठ 113। गालिब बड़े ही जिंदा दिल आदमी थे। बिहारी की भांति वह भी जीवन को उल्लास और विलास के साथ जीना चाहते थे। उनकी रचनाओं में पतनशील उस युग के वैभव और विध्वंस के चित्र सहज ही देखे जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 243। उल्लास और विषाद के रंग सहज ही चित्रित हो उठे हैं। यह सही है कि उनकी कविता इकबाल आदि कवियों की तरह कोई दार्शनिक आदर्श प्रस्तुत नहीं करती, लेकिन जीवन की प्रबल महानता, सुंदरता, अमरता और नश्वरता तथा अनुराग भरे प्रेम के गीत गाकर उनकी शायरी प्रेममय मानवता का जो संदेश दे जाती है, वह उर्दू कविता में विरल है। और वह हम मुवहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं, अज्जा ए इमा हो गईं। अर्थात हम एक ही परस्तिश करते हैं। हमारा धर्म यह है कि प्रत्यक्ष रीतियां तथा प्रकटित ढंग सब छोड़ दिए जाएं, सभी धर्म और मजहब समाप्त हो जाएं, तभी व्यक्ति को वास्तविक विश्वास मानवता का धर्म मिल सकेगा। गालिब का काव्य वास्तव में उर्दू संस्कृत की प्रतिष्ठा है। वह मनुष्य के जीवन की सहयात्रा का अनिवार्य साथी है। उसमें सभी प्रकार के धर्म और संप्रदाय की जगह मनुष्यता की आराधना है। इतने के बावजूद यदि कोई पूछे कि गालिब कौन है, तो गालिब का झुंझला के यह उत्तर देना लाजमी ही लगता है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या।